देखा अब्बास भाई, मजा आया।
वो कैसे?
वो ऐसे कि कोई तो मिला जो भाईजान के सामने खड़ा हो।
अब इसमें हमारा क्या फायदा?
मेरा तो फायदा है।
जैसे
होगा ना, खूब होगा।
बताओ ना कैसे।
अरे अब्बास भाई, क्यों सामने की बात आपकी समझ में नहीं आती? मैं आपको मुस्तकिल समझाया जा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है लगता है।
मैं अब तक समझ रहा था सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अब लग रहा है कोई बात जरूर है।
कोई एक बात नहीं, कई बातें। आप समझ जाएंगे, बहुत गहरी बातें हैं।
तुम भी अपना ख्याल रखना, उसकी जद में ना जाना।
डरिए मत, इन्हीं दिनों अपना हक लेकर एक छोटा मोटा कारखाना बनाऊंगा और सारे ताजिरों को पीछे छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल हाजी नुसरत की तरह नहीं हूँ जो दूसरों के पैसों पर जी रहे हैं, या जलाल जो अपने कोशिशें लगाए हुए कि किसी तरह भाईजान का मुकाबला कर सके।
तुम उनसे मुकाबला कर पाओगे?
अभी तो नहीं, जब मेरी जड़ें मजबूत हो जाएं तो उनकी जड़ों को ऐसे काटूंगा कि उसके बाद किसी सूरत से न पनप पाए। आप जाकर अपनी फिक्र कीजिए, अलबत्ता आपके लिए भी एक अच्छा प्लान सोचा है।
प्लान मेरे लिए? वो भी तुमने?
जब मुश्किल में फंसोगे और कहीं काम नहीं मिलेगा तो उस वक्त आपको अपने पास बुला लूंगा। बहरहाल आपसे एक फजूल सी रिश्तेदारी तो है ना, हम जुल्फ कभी रिश्तेदार नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि आप अपने बीवी बच्चों का पेट तो भर सकें।
अरे अरे मेरे भाई, अब इतना भी ऊंचा मत उड़ो।
डरिए मत, अब जमाना हमारा जमाना है, मेरा और मोहम्मद बाकर का जमाना। भाईजान गया, खत्म हो गया, समझे? अब क्या इरादा है, हमारे साथ होकर ऊपर की तरफ या फिर नीचे ही नीचे?
हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो ज्यादा हैं और एक दूसरे के साथ हैं।
हमारी तादाद भी कम नहीं, मैं हूँ, मोहम्मद बाकर है, अगर चाहें तो आप हैं, और जलाल तो हमारे साथ ही है, अहमद भी तो है ना, और इस मार्केट में बहुत से लोग हैं जो अभी तो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुनेंगे कि भाईजान अब वो नहीं रहे तो जाग उठेंगे। चलिए अब जवाब मत दीजिए, मैं तो आपको पहचानता हूँ ना, इसीलिए सोचने का वक्त देता हूँ आपको।
आजम कोई घर पर नहीं है क्या?
मोहम्मद हसन भाई तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं, लेकिन अशरफ को तो होना ही चाहिए।
अच्छा, तो फिर नीचे क्यों नहीं आए?
इन लोगों ने देखा होगा कि हम दोनों एक साथ हैं, तो आना मुनासिब नहीं समझा होगा।
नहीं भाई, काजिम को इतनी समझ कहाँ।
अशरफ बाजी तो है ना।
ये तो है, वरना अब तक तो काजिम दस्तखान पर शुरू हो चुके होते।
उनके लिए मैंने कुछ सीख कबाब बढ़ा दिए हैं, तैयार होने के बाद ले जाऊंगी।
ठीक, लेकिन आजम ये मुश्तरक आंगन खुद एक मुश्किल है।
कंजूस आदमी।
नहीं वाकई, कबाब की वजह से नहीं कह रहा हूँ, अगर हमारा आंगन अलग होता तो कुछ और ही लुत्फ होता, और तुमको भी इतना पर्दे करने की जरूरत ना पड़ती।
अब्बास साहब, अगर मेरी वजह से कह रहे हो तो मैं ठीक हूँ, मुझे आदत हो चुकी है।
अच्छा, मगर मुझे तो आदत नहीं हुई है।
तुम भी ना।
कहीं तुम कुछ बुरा मत सोचना, लेकिन अगर भाईजान तुम्हारा हिस्सा दे दें और मीरास की तकसीम हो जाती है तो कुछ अपने पैसे भी मिलाकर अपना एक मुस्तकिल घर खरीद सकते थे।
क्या जरूरत है, हम इससे बड़ा घर क्या करेंगे, हम तो सिर्फ दो ही लोग हैं।
हाँ, इस वक्त दो ही हैं, लेकिन कल को अगर हमारे दो चार बच्चे होते हैं और हर एक को एक मुस्तकिल कमरे की जरूरत पड़ी तो उस वक्त क्या करोगे?
उस वक्त तक अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह आप ठीक रहें और आपका साया हमारे सर पर रहे, बाकी अल्लाह पर भरोसा है।
नाज़नीन, एहतियासी करने ना पाए।
जी।
शाबाश मेरी बेटी, ये यादगारी है। हाँ,
आज क्या बात है, इतनी मोहब्बत दिखाने लगे हो?
मैं तो हमेशा ऐसा ही था, मुखलिस आदमी।
नहीं, वो जहर जो हलवा बनने वाली रात तुमने फैलाया है उसकी लिपा थोपी है।
उस रात मैंने क्या किया?
तुम मुझसे बेहतर जानते हो।
देखो अशरफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी लिपा पोती करूं।
मोहम्मद बाकर भाई को तुमने ही चढ़ाया था, मैंने अब तक नहीं देखा था कि वो भाईजान से इस तरह से बात करे।
नहीं मोहतरमा, वो बातें राख में दबी चिंगारी थी, आपको कुछ खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं थी, तुम लोग सब बेवकूफ रहना चाहते हो।
तुम कहना चाह रहे हो कि हम बहन भाई छोटी छोटी बातों पे दूसरे से दुश्मनी मोल लेते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं हैं कि एक दूसरे के खातिर अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। दो भाइयों के दरमियान हमारे ऐसा नहीं होता।
क्यों नहीं?
यही मोहम्मद बाकर को देख लो, अगर भाई जान को कांटा भी चुभ जाए तो तड़प उठते हैं।
तुम क्यों इतना नाराज हो रही हो, मैंने ऐसा क्या कहा?
तुम मैंने क्या कह दिया?
देर रात गई कौन हो सकता है?
रात? अरे तुमको क्या हो गया है?
जी
सलाम अलैकुम, एजेंसी से आया हूँ आपके घर की कीमत लगाने।
घर की कीमत लगाने?
आप आइए तो बताता हूँ।
घर बेचने का इरादा नहीं, किसी गलत एड्रेस पे आ गए होगे।
आप एक मिनट यहाँ आइए तो।
अरे भाई आप कहीं गलत
तो नहीं आ गए?
आप काजिम साहब हैं ना?
हाँ, लेकिन क्यों?
तो फिर सही घंटी बजाइए।
कौन था काजिम?
पता नहीं, देखता हूँ कौन है।
जान कह रहे थे आज कल में ही गेहूं मंगवा लेंगे, जैसे ही गेहूं आ जाएंगे धोकर फैला देंगे और इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते हलवा बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी।
ये कोई खेल है क्या कि जब मर्जी हुई तो हलवा बना लिया? ये हलवा नजर के लिए है, वो भी जनाब सैयदा की नजर का हलवा है।
अब तो जो होना था वो हो गया अम्मी।
मुझे डर है, मुझे डर लग रहा है कि इसका कोई बुरा अंजाम ना हो, कहीं खुदा न खास्ता कोई बला हम पे नाजिल ना हो जाए या मेरे बच्चों पे।
कैसी मुसीबत, परेशानी कैसी अम्मी?
मैं परेशान हूँ, अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ, बहुत बेचैन, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं कुछ हो ना जाए।
अरे अम्मी मैं खोलती हूँ।
सलामुअलैकुम।
सलामुअलैकुम, अंदर आना चाहते हैं बता दीजिए।
एक मिनट रुकिए।
ठीक है, अंदर चल के देख लेना।
सुनिए आप लोग पर्दा कर लीजिए।
सलाम अलैकुम। या अल्लाह, आइए आइए। अस्सलाम अलैकुम अम्मी जान।
वालेकुम सलाम। ये हैं कौन काजिम साहब?
शाह गुलाम।
कौन शाह गुलाम?
अब एक एक करके सबको समझाऊं।
काजिम साहब।
जी जनाब।
एक मिनट कमरे में देख सकते हैं?
क्यों नहीं गुलाम साहब, आइए।
वो किस लिए?
कोई खास बात नहीं, कोई घर में तो नहीं ना?
बात क्या है काजिम मियां?
मोहम्मद बाकर भाई अपना घर बेचना चाहते हैं।
बेचना चाहते हैं क्यों?
असल में बात ये है कि
एक मिनट गुलाम साहब, अम्मी क्या भाईजान ने उनको इजाजत नहीं दी कि जो चाहे करें? तो फिर यही है ना। गुलाम साहब आ जाइए, आइए अंदर देखिए। या अल्लाह, आइए।
ये सब क्या हो रहा है, इसको इसको हुआ क्या है?
मोहम्मद बाकर भाई को क्या हो गया है? क्या मेरे पापा का घर बेचना है?
तुम्हारे भाईजान को पता है?
आप लोगों ने शायद सुना नहीं है, वो कह रहे थे कि भाईजान ने ही कहा है।
मैं उनको फोन करने जा रही हूँ।
एक मिनट रुक तो जाओ, अभी तो सिर्फ देखने आया है।
मेरे खुदा कैसी मुसीबत हमारे सर आ रही है।
तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी।
वो भी किस तरह?
मैंने कहा था लेकिन तुमने नहीं सुना। ये बात नहीं है कि तुम सुनना नहीं चाह रहे थे, बस बेतवज्जो ही करते रहे। आजकल करते रहे तो इसका नतीजा यही होगा।
यही बात है ना, जब तक काम ठीक ठाक चलता रहे कोई पूछता भी नहीं कि कितनी जहमत उठाई, लेकिन जरा सी चूक हुई तो सब इल्जाम देने लगते हैं, सब बातें करने लगते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मिर्जा, नाराज मत होइएगा, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं।
ये मोहम्मद हसन की तबीयत अचानक कैसे खराब?
कुछ नहीं, मोहम्मद बाकिर से बात कर रहे थे, इतने में मोहम्मद हसन की तबीयत की बात छिड़ गई कि अचानक तबीयत और बिगड़ गई उसकी।
काजिम वहाँ आसपास में नहीं था? मैं बहुत दिनों से उसे देख रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके हैं। वो अक्सर एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैं
बैठिए बैठिए, मैं जवाब देता हूँ। हेलो,
कहाँ है भाईजान? अम्मी को आकर संभाले।
अम्मी, क्या हुआ? वो बताती क्यों नहीं? मैं जब तक घर पहुंचूंगा मेरी जान निकल जाएगी।
मेरी बेटी को परेशान मत करो, फोन मुझे दो।
आजम,
मोहम्मद अली, मैं हूँ बेटा।
अरे अम्मी, आपको क्या हो गया? बात क्या है?
मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा।
तुम अगर घर बेचना चाह रहे थे तो मुझसे तो कह सकते थे ना।
घर बेचूं? अपने अब्बा के घर को? ये कैसे हो सकता है? किसने कहा?
कासिम आया है, घर के कागजात मांग रहा है।
आपने दे दिया?
नहीं बेटा, मैंने कहा तुम्हें खुद आना चाहिए।
ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कासिम से कहीं वहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। आप परेशान ना हो, अगर कोई इस घर को बेचना चाहेगा तो मेरी लाश से गुजरना होगा।
बस मैं आया, खुदा हाफिज़।
अरे कुछ तो खा लेते।
बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत जल्दी है मुझे।
अरे कागजात क्या हुए?
भाईजान ने कहा है इंतजार कीजिए, वो खुद आ रहे हैं।
मैं इंतजार करूं?
जी आप।
अरे मुझसे क्या मतलब, किसी और की ख्वाहिश है? मैं तो सिर्फ उनकी बात पहुंचाने आया था।
भाईजान आ रहे हैं, जल्दी क्या है, उनसे खुद ले लेना।
ठीक है।
तुमने बताया नहीं वो कागजात किस लिए चाहिए?
अब्बास, तुम एक बात समझ नहीं सकते। अरे भाई, वो कागजात मेरे किस काम के हैं? ठीक है, उनको खुद आने दो, वो जो चाहें करें, मुझसे क्या मतलब।
कहाँ काजम साहब, एक मिनट बस, भाईजान आते ही होंगे।
उनके आने तक मैं आ जाऊंगा। अब्बास भाई, वो आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा रुके, मैं आता हूँ।
तुम भी वाकई अजीब आदमी हो।
हाँ तो ये रहा कारखाना, मैं तो इत्मामे हुज्जत कर रहा हूँ।
वो किस लिए?
देखो मेरे भाई, मेरे पास एक कारखाना है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ और तुम्हें भी कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो कौन बेहतर तुमसे? लेकिन बाकी कामों से मुझे कोई लेना देना नहीं। कल को अगर कोई मसला पेश आता है तो मेरा पाँव मत घसीटना।
कैसा मसला?
क्या बताऊँ, मुझे गैब की बात तो नहीं मालूम है। अगर कल तुमने कह दिया हाँ, उन लोगों ने कहा नहीं, बात आगे बढ़ गई, झगड़ा हो गया और खून के प्यासे हो गए एक दूसरे के।
खून के प्यासे?
तो और क्या, वो अपना नफा थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। भाई जाने को ले लो, बाजार में कितनी इज्जत है उसकी, वो थोड़ी पसंद करेंगे कोई नया रकीब खड़ा हो जाए उनके सामने, वो भी कौन, खुद उनका भाई। वो जहां तक हो सकता था तुम लोगों से खूब फायदा उठाया और सारे रकीबों को मैदान से बाहर कर दिया उसने, वो भी हर तरह से। वो आसानी से मानने वाला नहीं है। मैंने इसलिए सारी बातें बता दी, कल मुझको कुछ मत कहना।
ऐसी बात भी नहीं है जलाल साहब, मैं तो सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए पूछ रहा था कि कल अगर मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो आप मेरी हिमायत करना तो नहीं छोड़ेंगे।
इस सिलसिले में तुम परेशान बिल्कुल मत हो, बिल्कुल परेशान मत होना।
हेलो, सलाम अलैकुम भाई, कहाँ हो?
क्या काम है?
जरूरी काम।
ऑफिस जाओ, मैं आ रहा हूँ।
नहीं भाई, बहुत जरूरी काम है। गुलाम साहब घर देखने गए थे, क्या हंगामा खड़ा हुआ है, क्या बताऊं।
हंगामा? वो किस लिए?
कहाँ हो, मैं वहीं आ जाऊं।
मैं जलाल साहब के बंद कारखाने में हूँ, यहीं आ जाओ।
ठीक है, वहीं रुके रहना, मैं आ रहा हूँ, बस बस करीब ही हूँ। खुदा हाफिज।
मैं तुम्हें बताऊंगा।
ठीक है, चलता हूँ।
कासिम था,
इसकी तुम कद्र करो, बहुत तेज आदमी है।
इतना ज्यादा तेज के मुझे भी भेज दे।
कुछ दिन के लिए उसकी जरूरत है तुमको, जब तुम्हारा काम हो जाए निकाल बाहर करना।
क्यों?
बहुत खुदगर्ज आदमी है, हवा का रुख देख के चलता है।
अगर ऐसा आदमी है तो तुम क्यों उसकी मदद करते हो?
मैं चाहता हूँ तुम कारखाने का मालिक बन जाओ।
यानी तुम इतना ज्यादा चाहते हो कि मैं तरक्की करूँ, या तुम्हारा कुछ और ही इरादा है?
देखो मोहम्मद बाकिर, मैं बहुत दिनों से इस कारखाने को बेचना चाहता था और तुम खरीदना चाह रहे हो इसको, तो हम आपस में सौदा करना चाहते हैं, बस।
नहीं जलाल, बात कुछ और है। तुम इस कारखाने को इसलिए नहीं बेचना चाहते हो कि ये बिक नहीं रहा है, तुम्हें इसके पैसों की भी बहुत जरूरत नहीं है। असल बात कुछ और ही है।
असली बात। ठीक है, बताता हूँ मैं। तुम इतने बेवकूफ आदमी नहीं हो जो न समझ पाओ। आजकल बाजार में तुम सारे लोग ही टॉप पर हो, जो चाहते हो वही कीमत रखते हो। अगर हम एक पैसा भी कीमत बढ़ा दें, हमारा सामान बिकने वाला नहीं। मैं ये मोनोपोली खत्म करना चाहता हूँ। ये कारखाना तुम्हारे सामने है, खरीदना है खरीद लो, नहीं तो जाओ जाके भाईजान की नौकरी करते रहो।
मोहम्मद अली मेरे बेटे, अगर तुमने कुछ सोच रखा है तो बताओ। तो ये सब क्या है?
कुछ नहीं, हम बस सेंट ठीक ठाक करने में मसरूफ थे। अचानक काजिम एक साहब के साथ आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि घर का कागजात ले आए, फिर आपको मैंने फोन किया। मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल में मोहम्मद बाकर ने उस आदमी को भेजा था।
कैसे हैं मोहम्मद बाकर भाई?
मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
सुना नहीं।
देर क्यों हुई?
5 मिनट लगा आने में, आपको जल्दी है।
भाईजान है।
फोन मत उठाइएगा।
फोन ना उठाऊं?
पहले सोच समझ लीजिए, फिर आमने सामने बैठकर बात कीजिएगा। फोन पर ये काम नहीं हो सकता।
यकीनन घर गए हैं।
कसम से भाईजान जबरदस्ती कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं घर नहीं बेचेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कारखाने को यूं ही रहने दिया जाए। फिर बचा क्या? मैं कहता हूँ बेचना चाहिए वो घर भी और कारखाना भी।
यही दोनों तो असल हैं। हर चीज की कीमत लगानी होगी, या खरीदेंगे या बेचेंगे।
बेच देंगे मोहम्मद बाकर भाई।
क्यों?
कौन खरीद पाएगा मेरे भाई? हम सबका कुछ ही हिस्सा तो है, उससे घर खरीदना नामुमकिन है, वो कारखाना भी। भाईजान के अकाउंट में जो भी है वो सबका है, आपका भी एक हिस्सा है, और अपने हिस्से से ये घर तो खरीद नहीं सकते।
यानी अपने आबाई घर को बेच दें?
अगर अपना नुकसान नहीं चाहते तो करना होगा, बेचना पड़ेगा सब कुछ।
सब कुछ से तुम्हारा मतलब क्या काजिम?
घरों को, सईद इस्माइल के गोदाम को, यहाँ तक के कारखाने को। इस कमबख्त नकद रकम को तो आसानी से तकसीम किया जा सकता है ना?
लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है।
कौन आदमी?
यही जलाल। और कौन? मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है।
जो भी हो, फिलहाल जो भी कह रहा है वो आपके फायदे में, वरना हमें उससे क्या लेना देना।
वो हमें हराना चाहता है और पूरी कोशिश कर रहा है।
कुछ नहीं कर सकता मोहम्मद बाकर भाई। कल जब आपका नाम बाजार पर छा गया और आप ही का नाम रहा उस बाजार में, तो कुत्ते की तरह आपके पीछे दौड़ेगा।
ये तो है, सब कुछ पैसों से तोड़ना जरूरी है।
लेकिन फिर से हंगामा खड़ा मत कीजिएगा।
क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये कि जाकर ये मत कहिएगा कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे बेचना है। सब आपकी मुखालफत करने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाइएगा, कभी नर्म कभी गर्म, लेकिन ज्यादा वक्त भी मत बर्बाद कीजिएगा, वरना कारखाना हाथ से निकल जाएगा। समझ गए?
अस्सलाम
वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सलाम अलैकुम।
इस तरह से क्यों?
फिर किस तरह?
जैसे मुझे अब तक कभी देखा ही नहीं, या मैं कोई गैर हूँ?
क्यों नहीं, देखा है, लेकिन तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा।
कौन सा रूप?
बेटा मोहम्मद बाकर।
जी अम्मी जान।
तुम इस घर को बेचना चाहते हो, अपने आबाई घर को, वो घर जिसमें तुम पले बढ़े हो?
क्यों, क्या हुआ अम्मी?
वो आदमी कौन था जिसे तूने भेजा था घर की नपाई के लिए?
ब्रोकर मोहम्मद हसन, ब्रोकर, इस घर की कीमत लगाने आया था।
किसने तुमसे कहा था घर बिकना है?
भाईजान कहाँ है?
मेरे सवाल का जवाब दो।
भाईजान रुके नहीं कि देख पाते कि तुम, अस्तग़फ़िरुल्लाह।
मैं क्या आज़म?
क्या तुम खुद नहीं जानते?
तुम दखल मत दो।
क्यों ना दूं? भाईजान ने कौन सा कसूर किया था?
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम इस घर को बेचना चाहते हो जिसमें हम पले बढ़े हैं?
क्या भाईजान ने नहीं कहा था कि तुम खुद आगे बढ़ के देखो कि हमारे पास क्या क्या है? سب کی قیمت لگاؤ۔ میں نے اسی لیے اس آدمی کو یہاں بھیجا تھا۔
سب سے پہلے میرا گھر دیکھنے آیا تھا۔
سب کے گھر کی قیمت لگانے آیا تھا۔ مرحوم ابا کے پاس اس گھر، اس گودام اور اس کارخانے کے علاوہ کچھ تھا؟
خدا ان کی مغفرت کرے۔
تمہارا گھر بھی اسی جائیداد کا حصہ ہے؟
تمہارا گھر بھی ہے، سب کا گھر ہے، اسی لیے میں نے قیمت لگانے کو کہا۔ یہ بتاؤ، کیا تم سمجھتے ہو میں انسان نہیں ہوں؟ میں اس گھر میں پلا بڑا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ خاندانی گھر کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا وہ کاغذات کا کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی، معلوم تو ہونا چاہیے گھر کتنے میٹر کا ہے، یہ تو اسی کاغذ پر لکھا ہے نا۔
پوچھتے تو کیوں نہ بتاتے؟
بغیر اطلاع کے کسی کو بھیج دیا، یہ نے سوچا کہ امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بھائی جان نے کہا کہ ٹوپی لیاؤ، تم سیدھے سر ہی کاٹ لائے۔
یہ بتاؤ، کیا میں اس گھر کا رکن نہیں ہوں؟ کیا میں تم لوگوں کا بھائی نہیں ہوں؟
محمد باقر بھائی کی نیت بری نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔
محمد باقر کی نیت یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔
مجھے تو آپ سے زیادہ تعجب ہوا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی گھنٹی بجائے کہے کہ میں گھر ناپنے آیا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو اس کا غریباں پکڑ کر مارنے والا ہی تھا، اچانک اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ امی خدا کی قسم میں ڈر گیا۔
وہ تم ہی تھے جو اس کے کان میں بار بار پھس پھسا رہے تھے، تم ہی اسے چڑھا رہے تھے۔ کاظم، اپنے کو سدھار لو۔ خدا کی قسم، اگر فساد پھیلانے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں؟
خدا مجھے موت دے محمد حسن، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
آپ نہیں جانتی امی جان، جب سے بھائی جان نے جائیداد کی بات کہی اسی وقت سے یہ زہر گھولنے کوشش میں لگا ہوا ہے، میرے کان میں، ابا سے کانوں میں۔
محمد حسن بھائی، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ میں جو کچھ بھی ہوں امی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوں، ایک معمولی سا نوکری تو تھا، پھر آپ کے گھر کا داماد بن گیا۔ امی کتنا میرا خیال رکھتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، اپنا برا وقت نہیں بھولا ہوں، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں۔
کاظم، کاظم،
دیکھا تم نے کیا کیا محمد حسن؟ کاظم کوئی غیر تو نہیں ہے، تمہارا بہنوئی ہے، میرا داماد ہے۔
میں کیا کہوں امی، میں کیسے کہوں، آخر کیسے کہوں میں؟
محمد حسن، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟
تم بیٹھے رہو بھائی، زیادہ مت بولو۔
تو کیا میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں؟
عباس، اس وقت زیادہ مت بولو، میں بہت غصے میں ہوں۔
اچھا، ایسی باتیں تو کہیں جا کر اپنا غصہ اتار لو۔
آخر تم سے کیا مطلب؟ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم جو کچھ کریں تم سے مطلب؟
ارے
محمد حسن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
بس دماغ چل گیا ہے۔
کیا کہا، کیا کہا تم نے؟
محمد حسن، خدا کے واسطے،
ارے بھائی، کوئی ان کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے۔
تم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے؟
لو یہ کھا لو، تمہارا سر درد صحیح ہو جائے گا۔ لو،
مجھے تو یہ خوف ہے کہ اس جھگڑے میں کہیں امی کو کچھ نہ ہو جائے۔
ڈرو مت، امی نے یہ سب بہت دیکھا ہے، یہ سب تو بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن ان کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کافی لمبا کھنچ چکا ہے۔
میں اسے ختم کر دوں گا، میں اس گھر کو اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا۔
ہیلو، وعلیکم السلام۔ او ہو، السلام علیکم محسن صاحب، کیسے ہیں؟ جی جی، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، میں ان کو دیتا ہوں۔ رجسٹرار حاجی محسن کا فون ہے۔
السلام علیکم، کیسے ہیں؟ شکریہ۔ کہاں، کاغذات تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضرور محمد امیر کو لینے کے لیے بھیج دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ شکریہ، خدا حافظ۔
مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے معاملہ بھول جانا چاہیے۔
یہ تو کارخانے کی بات ہے۔
معلوم ہے، دیر نہیں ہوگی، کارخانہ کہیں نہیں جا رہا ہے۔
جانتے ہو میرے صاحب،
جانتا ہوں، جیسے تمہیں کوئی اچانک کاری ضرب لگ گیا، یہی نا؟
کہیں ہم دشمنوں کو خوش نہ کریں۔
دشمنوں کے شادیانوں کی آواز، وہ تو آنے لگی ہے نا محمد علی۔
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاف کیجیے گا بھائی جان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں نہیں رکے تاکہ محمد باقر بھائی کو ان کا جواب مل جاتا؟
ارے جوانی تو کہاں کھو گئی؟
میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا کہ ان سے لڑائی نہ ہو.
تمہاری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ تم بہت سرکش ہو گئے محمد امیر.
بھائی جان کیا آپ نے امی کی حالت نہیں دیکھی؟
اندھا نہیں ہوں، دیکھا.
آخر میں نے کیا کیا؟
ابھی تک کچھ نہیں. پہلے بات کر کے غصہ اتارو گے، پھر کام کرو گے. اب یہی رہ گیا کہ ہم بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑیں. تمہارا کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں ہے تمہیں.
بھائی جان
تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ محمد باقر تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہاں ہو. دو چیک کیش کروا کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا، باقی
مت کرو نازنین، بالکل موڈ نہیں، بھاگو.
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلے گئے تھے کاظم؟ اب تک کہاں تھے؟ وہ کون تھا جو آیا تھا؟ کاظم کچھ تو بولو، میری جان لو گے کیا؟ لو ایک گھونٹ پانی پی لو.
نہیں چاہیے.
ایک گلاس پانی تو پی لو، گلا سوکھ گیا ہوگا. ایسا کیوں کر رہے ہو کاظم؟ کچھ نہیں میری بیٹی، کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں پتہ کیا ہو گیا ہے.
پاگل ہو گیا ہوں، مجھے پاگل کر دیا ہے تم نے اور تمہارے رشتہ داروں نے. وہ تمہارے بھائی جو اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. دیکھو اشرف، میں کبھی ان لوگوں کا نوکر تھا، لیکن اب تمہارا شوہر ہوں، اس گھر کا داماد ہوں.
سن لو، اگر میرے بھائی اگر تمہاری عزت نہیں بھی کرتے ہیں تو انہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہے. اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو دیکھو.
میری بات سنو.
میری بات سنو کاظم، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں. جب سے بھائی جان نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا حساب کتاب سامنے رکھا ہے اور ہم سب کے.
میں سن چکا ہوں.
تم نے ان کی بات سنی ہے، لیکن آدھی بات سنی ہے، آدھی بات پر توجہ نہیں دی ہے. کاظم نازن اب 6 سال کی ہے، اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے. تم اس وقت اس گھر کے داماد ہو، تمہاری ایک عزت ہے، اپنی عزت کا خیال خود ہی کرو.
مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟
یہ پوچھو کہ میں کیا نہ کروں. آج اب کہہ رہی تھی کہ عباس کے ساتھ بیٹھ کر تم فالتو کی باتیں کر رہے تھے. محمد حسن بھائی سے بھی کہا کہ جا کر اپنا حصہ لے لو.
میرے سامنے تم بھائی بھائی مت کرو، تمہارے بھائی ہیں کیا؟ کچھ معمولی حیثیت کے لوگ جو ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بیکار میں مونچھوں پر تاؤ دے رہے ہیں. میرا منہ مت کھلوانا.
کاظم تمہاری مونچھوں پر ابھی تو انہوں نے ہی تاؤ دیا.
تم اپنا فیصلہ کرو، یا میری بیوی ہو یا ان لوگوں کی بہن.
میں تمہاری بیوی بننے سے پہلے ان لوگوں کی بہن تھی.
شاباش، تو پھر انہیں لوگوں کی بہن بنی رہو. ایسی بیوی نہیں چاہیے جو دوسرے کے لیے اپنے شوہر کو قربان کرے.
تمہیں ہوا کیا ہے کاظم؟
فیصلہ کر رہا ہوں، انتظار کرو، تمہیں بھی اپنے بھائیوں کے پاس بھیج دوں گا.
کاظم یہ باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں.
اشرف میری بات کان کھول کر سنو، اس گھر میں ہر فیصلہ میں کروں گا، کوئی اور نہیں، سمجھی؟
کیا پکایا؟
ہمیشہ کی طرح کل کے کچھ بچے کچے سالن، پرسوں کا کچھ بچا کچا چاول اور کچھ شامی کباب.
میں باہر سے کھانا منگوا لیتا ہوں.
ارے عباس میں نے کھانا گرم کیا ہے.
میں نہیں کھا سکتا، میرا دل نہیں چاہ رہا، زبردستی ہے.
تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر تمہاری ناراضگی محمد حسن سے ہے.
محمد حسن کیا چیز ہے؟ میں تم سے ناراض ہوں جو ہر ایک کو اجازت دیتی ہو کہ تمہاری زندگی میں مداخلت کرے، جو بھی چاہے کہے.
اب کس نے کیا کہہ دیا ہے؟
کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہوا؟ یہ کسے کہا گیا کہ عباس ہمارے یہاں کا نوکر تھا؟
ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا کہہ رہے ہو. اتفاق سے سب ہمارے یہاں تمہارے پیٹ پیچھے بھی تمہاری تعریفیں کرتے ہیں. اور یہ محمد حسن بھائی ہے جن کی بات کر رہے ہو, ان کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور تھی.
اچھا, جو جس سے بھی ناراض ہو وہ اپنا غصہ میرے اوپر ہی اتارتا ہے. میں تو جیسے لاوارث ہوں. یہی کاظم ان کے لیے ٹھیک ہے, جیسے ہی بولتے ہیں جھپٹ پڑتا ہے.
کاظم کی یہ ہمت
ہمت ہے یا نہیں, لیکن کام تو ٹھیک ہی کرتا ہے. تمہارے بھائیوں کی جتنی عزت کرو اتنا ہی دوسروں کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. جیسے ہی کہوں کہ آپ کا غلام ہو سر چڑھنے لگتے ہیں. میں بھی انہیں دیکھ لوں گا.
تم کیا کرو گے؟
آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه.